अला इन्ना हम यफनूना सुदूरहुम, खबरदार बेशक वो मोड़ दें अपने सीने, लियस्तख्फू मिन, ताकि वो छुप सकें उससे। वो अपने सीनों को मोड़ते हैं कि वो उससे छुप सके। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग करते थे ना, दावत देते थे, यही नूह अलैहि सलाम के साथ भी होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ, कि लोग जो थे वो देख लेते थे कि आ रहे हैं, वो छुपने की कोशिश करते थे कि अब आके हमें कोई नसीहत करेंगे, ये बातें बताएंगे, तो अपने आप को मोड़ते थे सीने ताकि छुप सके। अल्लाह खबरदार, ही न यस्तौशूना सियाबहुम, जिस वक्त वो ढांपते हैं अपने कपड़ों को, यानी अपने जैसे इंसान कपड़ा नहीं ऊपर ले लेता कि मुझे देख ही ना दे, वो इधर को मुंह भी कर लिया और साथ अपनी चादर भी आगे ऐसे करके छुपा लिया अपने आप को कि इसको पता ही ना चले मेरा, कहीं डर ही ना आ जाए, कहीं हमें ही ना बताने लगे। तो जब तुम ऐसे कर रहे होते हो ना, जब वो ऐसे करते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, यालमु मा युसिरुना व मा युलिनुन, अल्लाह तो जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। इन्ना व अलीमुन बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला तो सीनों के अंदर की बातों को भी जानने वाला है। और देखिए, ये इंसानों का हमेशा से तरीका रहा है, आज तक ऐसे होता है। आज भी देखें, आप कहीं जा रहे हैं, लोगों ने देख लिया कि ये तो कोई है जो कि मसलन कोई टीचर है या कोई आलिम है या कोई कोई स्कॉलर है, तो लोग क्या करते हैं, इधर उधर हो जाओ, या तो कहीं से प्रिटेंड करो कि मैंने देखा ही नहीं, या बस ऐसे मुंह सा इधर को करके छुपा सा लो कि उनको पता ही ना चले मेरा, कहीं इधर ही आके ना नसीहतें शुरू कर दें, कहीं पूछ ही ना लें कुछ, क्लास लेती हो या नहीं, कहीं कहीं कोई और ही ना बात करने लगे, कहीं मेरा हाल हुलिया ही ना देख ले, बस यहाँ पे आपको किसी तरह छुपा लूं। तो आज भी लोग ऐसे करते हैं। बाज दफा लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि अल्लाह की बातें की जाएं, तो उनको ये भी बुरा लगता है कि इधर आ जाएंगे तो बस वो अपने शुरू हो जाएंगे, बस अब मैं ये बातें सुनूं। तो यानी इंसान जो है ना, फिर ना वो उसका दिल उकताया हुआ होता है इन चीजों से, वो सुनना नहीं चाहता अल्लाह की बात को, इसलिए अपने आप को छुपाते हैं। तो ऐसे भी लोग थे मक्का में, ये भी इग्नोर करने का तरीका होता है, और आज तक ऐसे लोग चल रहे हैं। बाज लोग दर्स वगैरह पे भी ऐसे होते हैं, या आप किसी मजलिस में ही उनके साथ बैठे हो, आप अल्लाह का जो ही जिक्र कोई बात शुरू करेंगे, वो बच्चों से बात करना शुरू कर देंगे, जैसे कि वो उन्होंने बिल्कुल आपकी बात को इग्नोर किया, या वो अपना फोन पे कुछ देखना शुरू कर देंगे, या वो उठ के चले जाएंगे उधर, अच्छा मैं जरा देख के आती हूँ, क्योंकि बस उन्होंने इग्नोर करना है ना इन बातों को, वो सुनना नहीं चाहते। इसी तरह बाज जगह मैं तो वो दर्स देती हूँ, मुझे पता है बाज जगह ऐसी होती है, ऐसी मजलिस होती है खासतौर पे ये शादियां वगैरह के, जब लोगों ने आज फैशन बना लिया कि ये भी एक दर्स रखना जरूरी है, कि भाई शादी का दर्स एक होना चाहिए, ये भी एक रस्म हो गई, पहले और रस्में होती थी, अब ये भी एक रस्म है, वो एक रस्म है कि भाई दर्स करना है आपने, वहां पे लोगों का कोई मूड होता है अल्लाह की बात सुनने का, उनका नाचने का मूड है, म्यूजिक का मूड है, गानों का मूड है, वो कोई इस मूड से बैठे हुए कि अल्लाह की बात सुने, तो ऐसे लगता है जैसे इनको जबरदस्ती किसी ने बांध के बिठाया हुआ, और वो कह रहे हैं कब इनकी बातें खत्म हो और हमारी जान छूटे, क्योंकि उनको तो बुलाया हुआ है कि आज मेहंदी की रात है, या आज वो गाने की रात है, या जो जो भी है, तो आप आ जाएं, और बीच में आपने किसी को दर्श के लिए शुरू कर दी। तो ये जो चीज है ना, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह जानता है किसके दिल में सुनने की तड़प है अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की बात को, अल्लाह ये भी जानता है तुम जाहिर क्या कर रहे हो, तुम जाहिर तो ये कर रहे हो कि तुम बैठे हुए हो यहाँ पे, लेकिन तुम्हारा दिल कितना उकताया हुआ है, तुम्हारा दिल कितना घबरा रहा है, और तुम्हें कितनी ये जल्दी है कि खत्म होना ये बातें, ये अल्लाह जानता है। आपकी कोई अल्लाह की बात सुना रहा है, उसके ऊपर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये क्यों सुना रहा है। हाँ, लेकिन हम उतनी देर में कोई और बातें करें तो सबको बड़ी अच्छी लगेंगी, कोई फैशन की कर लें, कोई ये डिजाइनिंग की कर लें, कोई प्रॉफिट बनाने की बातें कर लें, किसी इन्वेस्टमेंट की कर लें, कर सजाने की बातें कर लें बहुत अच्छी लगेंगी। तो अल्लाह ताला क्या नहीं जानता, वो जो सीनों के अंदर के भेद भी जानता है, क्या उसको नहीं पता किसको कितना शौक है, कौन कितनी तड़प रखता है अपने अंदर, कौन है उकताया हुआ है, कौन सिर्फ खाने पीने के लिए आया है, कौन सिर्फ गपशप के लिए आया है, कौन सिर्फ फन के लिए आया हुआ। तो फिर अगर ऐसे लोग हैं तो फिर तो जाहिर ही बात है उनको बात सुनानी या ना सुनानी एक बराबर है, वो उस एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकल रही है। तो इसलिए ये अगर किसी के सामने ऐसा होता है तो इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तो पैगंबरों के साथ ऐसा हुआ, लोग छुप जाते थे, लोग बात सुनने से कतराते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह तो सीनों के अंदर की बातों को भी जानता है। ये क्या सोचते हैं कि ये जो सोच रहे हैं अल्लाह को नहीं पता, इनको कितनी इस चीज की लगन लगी हुई अल्लाह को नहीं पता क्या? वो तो वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, वो तो पहुंचाता है हर जानदार को उसका रिज्क, उसने अपने जिम्मे लिया हुआ। और इसका पिछली बात से क्या ताल्लुक है कि जिसको इल्म होगा ना कि कहां कोई जानदार है वही उसको रिस्क पहुंचा सकता है ना। अगर किसी को पता ही नहीं कि एक कीड़ा जो है वो पत्थर के नीचे कहीं दबा पड़ा है, जमीन के अंदर भी रींगने वाली चीजें हैं, कितनी समंदर की तहों में भी जहां पे इतनी डार्कनेस है, वहां पे कहते हैं वो मछलियों की आंखें ही नहीं है, इतना डार्क है वहां पर भी जिसको पता होगा कि मेरी मखलूक यहां है वही उसको रिस्क पहुंचा सकता है ना। उसका इल्म तो यहां तक मुहित है कि वो हर जानदार को उसका रिस्क पहुंचा रहा है, ना सिर्फ पहुंचा रहा है उसने अपने जिम्मे लिया हुआ है, यानी उसने अपनी जिम्मेदारी ये ली हुई है कि ये मैंने रिस्क पहुंचाना है इसको। अच्छा ये बात तो मैंने उससे आपको बता दी जो पिछली बात चल रही थी। एक और माना जो है, ये जो पिछली आयत है इसका एक और माना भी है जो बुखारी में है, और इसी आयत के शाने नजूल के बारे में इब्ने अब्बास ने फरमाया, तो वो भी मैं आपको मेंशन कर लेती हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे जो गुसल करते वक्त या रफा हाजत करते वक्त भी ना अल्लाह ताला से शर्म महसूस करते थे कि हम अपने सतर को खोलें, तो वो इस वजह से अपने सीनों को दोहरा कर लेते थे। जैसे बच्चे नहीं आप देखते कि कभी नंगे हो तो वो ऐसे अपने अपनी दोनों कंधों को ऐसे मोड़ से लेते हैं ताकि अपने आप को छुपाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह से तो नहीं छुप सकते, बेलिबास होके भी अल्लाह से नहीं छुप सकते। तो वो ये सोचते थे कि कोई मौका ऐसा ना हो कि हम अल्लाह के सामने भी बेलिबास हो जाएं। बाज लोगों में हया बहुत ज्यादा होती है ना, तो कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला से तो कहीं पे भी नहीं छुप सकते, अल्लाह ताला तो उनको हर हालत में देखता है और हर उनकी बात को जो सीनों के अंदर छुपी हुई है उस तक को जानता है। तो कपड़ा पहनने या उतारने से अल्लाह ताला के सामने कोई छुपाया अपने आप को नहीं जा सकता, लिहाजा शर्म की भी हुदूद देखिए वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। बाज़ हमारे कल्चर्स में ये होता है कि हम नहाते वक्त भी वो कहते नहीं अपने आप को नंगा नहीं करना, तो ये भी एक मुबालगा है ना, एग्जैजुरेशन ही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, खामखा का एक उलूव है। तो इसलिए जब आप चार दीवारी में हो बिल्कुल तन्हा है तो इंसान नहा रहा है या रफाए हाजत के लिए है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, लेकिन वैसे अपने आप को बिल्कुल नंगा करके घूमते रहना कि मैं तो घर में अकेली हूं तो मैं गर्मी बहुत है तो नंगा करके घूम रहे हैं, या मर्द कोई घूम रहा है कि कौन सा हमें कोई देख रहा है, तो फिर ये हया करनी चाहिए कि आपके साथ फरिश्ते भी तो हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट आयत में पता चला कि कोई दाबा कोई जानदार जमीन में ऐसा नहीं है मगर अल्लाह ताला के जिम्मे उसका रिस्क है। क्यों अल्लाह के जिम्मे क्यों है? हाँ इसलिए कि अल्लाह ताला रब है, रब वही जात होती है जो मालिक भी होता है और वो अपनी चीज को बढ़ोतरी भी देता है, जिसको कहते हैं नशो नुमा देने वाला, उसको बढ़ावा भी देता है, और उसको बढ़ाने का हर स्टेज जो है उसकी जिंदगी की हर स्टेज को, जो भी जरूरियात उसके साथ लगी हुई है, जो भी उसके तकाजे हैं उसकी हयात के, उनको भी पूरा करता है। और रिस्क भी उनमें से एक चीज है, और रिस्क में से आपको पता है हर चीज ही आ जाती है, जो भी प्रोविजंस है, जो भी उसकी जिंदगी के लिए उसको जरूरियात है, अल्लाह ताला उसको उसकी पूरी करता है। अल्लाह ताला तुमसे रिस्क नहीं मांगता, वो तो तुम्हें रिस्क अता करता है। और आप इससे देख लें कि कहाँ कहाँ अल्लाह की मखलूक है। हम इवन आप पौधे देख लें, कई दरख्त इतने पहाड़ों पहाड़ उनसे लदे होते, अब वहां तक उनको कौन पानी पहुंचाता है, वहां कौन जाके उनको कुछ देता है, यानी वो ऐसे ही खड़े में, किसी ने भी नहीं आज तक उनको पानी डाला होगा, कौन उनको पिला रहा है ये पानी। अल्लाह ताला उनका भी रिस्क देने वाला है। इसी तरह कोई रेंगने वाला कीड़ा हो या कोई मछली हो, इवन व्हेल मछली के बारे में आता है कि उसकी एक दिन की जो डाइट है ना, एक दिन का फूड 28 टन्स का है, टन टन, तो टन कितना ज्यादा होता है, हम 1 kg भी नहीं खा सकते, तो टन तो बहुत है। तो एक दिन की ये उसकी खुराक है, यानी कितने लोग मिल भी जाएं तो फिर भी उसके एक दिन का खाना बना के उसको देना मुश्किल हो जाए, उसको पालना मुश्किल हो जाए। रब वो है जिसको, हाँ रब का माना, हाँ ये मुझे याद आया कि मैंने आपको पहले भी बताया, रब का माना पालने वाला। तो पालने के लिए जितनी चीजों की जरूरत होती है ना, चाहे वो खाना है पीना है, ऑक्सीजन की सूरत में है, या उसके सर्वाइवल के लिए उसको सर्दी गर्मी का राइट टेम्परेचर की भी जरूरत है वो है, या जो भी उसकी जरूरियात है सर्वाइवल के लिए, वो सारी प्रोवाइड करने वाला। अब देखें ये पतंगे हैं, तितलियां हैं, फिर बर्ड्स हैं, इन सारों को कोई, मैं और आप तो नहीं दाना डालते, हम तो किसी को डाल भी देते तो हम सोचते पता नहीं हम ही इसको पालने वाले हैं। तो ये कहाँ जानवर चर चुग रहे हैं, या ये कहाँ फिर हर एक की खुराक किधर है, जंगलों में कितने जानवर हैं, समुद्रों में कितने जानवर हैं, सहराओं में कितने हैं, जमीन के नीचे कितने हैं, फिजाओं में कितने हैं, सबका रिस्क अल्लाह ही देने वाला है। लेकिन इंसान देखो, ये इंसान कितना भोला है ना, वो देखता सबको अल्लाह रिस्क दे रहा है, मुझे नहीं देगा। वो अपने रिस्क के लिए डरता है कि पता नहीं हाय हराम रास्ते इख्तियार कर लूं, क्योंकि पता नहीं वो इधर इस तरह तो कमाऊंगा क्या, तो खाऊंगा क्या। वो जो सबको खिला रहा है पिला रहा है, वो तुझे ना खिलाएगा, वो जिसने माँ के पेट में भी तुझे खिलाया, वो अब माँ के पेट से बाहर आके ताकतवर हो गया तब ना खिलाएगा। सुभान अल्लाह। तो कोई जानदार वह माँ मिन दाबतिन कह के ना, हर एक को कह दिया गया कि कोई जानदार ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला, मगर अल्लाह के जिम्मे उसका रिस्क है। यानी इसमें सबको इसमें शामिल कर दिया गया, हर जानदार इसमें आ गया, हर एक का रिस्क अल्लाह ही के जिम्मे है। कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसका ना हो, जिसका कोई और दे रहा हो रिस्क। और फिर भी इंसान इतने दीवाने हैं कि अपना रिस्क मांगने के लिए कहते हैं हाय रिस्क की बड़ी मुश्किलात हो रही है, फलां जगह पे जाओ, वहां पे जाके धागे बांधो और उनको उनके आगे फरियादे करो तो फिर आपको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी के मसले है, कारोबार नहीं चल रहा है, ये हो रहा है, तो वहां पे जाके मिलेगा। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सब जानदारों को भी रिस्क अल्लाह ही देता है, तुम्हें रिस्क देना क्या उसको मुश्किल है। और दाबा में मैंने आपको बताया ना, सारे ही आ गए। अल्लाहु अकबर। अच्छा अब फरमाया व यालमु मुस्तकर्रहा व मुस्तौदाहा, उसका मुस्तकर भी अल्लाह ही के जिम्मे है और उसका मुस्तौदा भी जिम्मे नहीं इल्म में है। उसका मुस्तकर भी अल्लाह के इल्म में और उसका मुस्तौदा, मुस्तकर और मुस्तौदा में क्या फर्क है। मुस्तकर करार की जगह, उस जगह को कहा जाता है जो इंसान की मुस्तकिल तौर पे ना, जैसे कहते हैं परमानेंट रेजिडेंस जिसको हम कह देंगे ना, तो वो मुस्तकर है। और मुस्तौदा जहां पे इंसान टेम्पररी तौर पर ठहरे, विदा से जैसे आप कह लेना, टेम्परेरी तौर पे ठहरे, अल्लाह को उसका मुस्तकर भी पता है और मुस्तौदा भी पता है। तो यानी इंसान पैदा जब नहीं भी हुआ ना, क्योंकि उलमा ने इसके बारे में इतने सारे इंटरप्रिटेशंस इसकी की हैं कि इंसान का मुस्तकर और मुस्तौदा क्या है, और सारी ठीक है, सभी ठीक है। वो कहते हैं कि इंसान का मुस्तकर माँ का पेट और मुस्तौदा बाप की पुश्त है, यानी बाप की पुश्त में नुतफा था ना, नुतफे से फिर माँ के पेट में आया, तो वो उसका मुस्तकर। अब आपको याद होगा सूरह नाम में मैंने इसके बारे में बड़ा बताया था, क्योंकि वहां पे भी आया था ना, वो लदी इंशा को मिन्नफ से माहिदा थे मुस्तकर व मुस्तौदा, वहां पे भी आता है और यहाँ पे फिर वही बात है। तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि जितने ये सारी मुफसिरीन की आराए सभी सही है, इसलिए कि इंसान का एक थोड़ी है मुस्तकर और मुस्तौदा, एक के बाद दूसरा दूसरा। आप जितनी मर्जी अपनी परमानेंट रेजिडेंस है, वो कहते हैं आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, हम लिखते तो हैं अपना परमानेंट एड्रेस जहां हम रहते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बताएं क्या ये परमानेंट है? उसके बाद भी एक और है ना एड्रेस, उसके बाद चलो सारी जिंदगी भी कोई एक जगह पे रहता है, लेकिन फिर भी उसके बाद कब्र है, उसके बाद हशर है। अल्टीमेट जो मुस्तकर है इंसान का, वो तो जन्नत या जो भी उसका ठिकाना होगा वो ही है ना, और मुस्तौदा उससे पहले जो भी टेम्प्ररी है वो ठिकाने सारे मुस्तौदा है। तो इंसान पहले नुतफे के तौर पे मुस्तौदा था कि बाप की पुश्त में था, फिर मुस्तकर वो करार उसने पकड़ा माँ के पेट में, वो उसकी परमानेंट रेजिडेंट बन गई। फिर उसके बाद फिर वो दुनिया में आया, बाद ने कहा कि दुनिया की जिंदगी जो है मुस्तौदा है और आखरत मुस्तकर है। बाद ने कहा कि दुनिया की जिंदगी मुस्तौदा है और जो कब्र है वो मुस्तकर है, क्योंकि वहीं पे वो फिर रहेगा रहेगा जब तक कयामत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। इमाम शौकानी ने एक और तफसीर की है, उन्होंने कहा है कि जो माँ का पेट है ना वो है मुस्तौदा, वो मुस्तौदा है, और फिर मुस्तकर जो है वो जाहिर है कि इंसान वहां से फिर मुस्तौदा, असल में तो जो इंसान की परमानेंट जगह है वो तो बिल्कुल आखरत ही है ना। तो वो कहते हैं कि उसके बाद वो मुस्तकर जो है वो उसका उसके दफन होने की जगह। तो मुस्तौदा क्या था? रहमे मादर। अब सारा सफर करके फिर वो अपनी करारगाह पे पहुंच गया, कुछ नहीं था और फिर कुछ नहीं हो गया, दफन हो गया। तो वो चाहे मिट्टी में गया, चाहे समंदर में गया, चाहे मछली के पेट में गया, कहाँ गया, असल बात आपको बताने की ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह को इल्म है। अभी मैंने सारी आपको बातें बता दी ना, निचोड़ क्या है बात कि किसके ऊपर एम्फोसिस, वो ये नहीं है कि आप इन चीजों को ही समझते रहे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए एक बातें कि क्या क्या हो सकती है। असल बात जो समझने की है ना वो ये, अल्लाह ताला को सारा इल्म है। लोग ना उनसे पूछ रहे होते हैं क्या बताएं हमारे लिए वहां का सफर कैसा रहेगा, फलां जगह पे हम जाएं वहां पे कारोबार करें तो वो कैसा निकलेगा, भी इस जगह मूव हो जाए हमारा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। ओ अल्लाह को तो पता है तूने किस मट्टी में जाना है, उसको तो ये भी पता है तूने कहाँ किस जगह पे तू तेरा मकाम होगा, तेरी कब्र होगी, अल्लाह तो वो भी जानता है। अब आज से सोचे, आज से 50-60 साल पहले हम तो थे भी नहीं, हाँ हम थे भी नहीं, और देखिए उसके बाद हम दुनिया के अंदर आए तो हमें कहाँ पता कि हमारे कौन से बच्चे पैदा होने हैं। अल्लाह ताला को ये पता है कि ये किस बाप का नुतफा और किस माँ का पेट इसकी करारगा बनेगा, इसका मुस्तौदा और मुस्तकर बनेगा, ये भी वो जानता है किस माँ के पेट में ये होगा और किस बाप का मुस्तौदा होगा, किसकी पुश्त से निकलेगा, वहां पे क्या होगा, ये उसको उस नुतफे को भी उस वक्त जानता है कि इस नुतफे से ये बंदा बनना है जिसने यहां मरना है और फिर जिसने हशर में इधर खड़े होना है और फिर इसने जन्नत में ये मकाम पाना है। अल्लाह ताला को सब इल्म है, सुभान अल्लाह, उसके इल्म की वसत देखें। ये है असल बात जो समझने की, बजाय आप सिर्फ इसमें ना उलझते रहिएगा कि क्या इसका मतलब और क्या इसका मतलब, और फिर किस मट्टी में वो दफन होगा, तो वो उस मट्टी के अंदर किधर चला गया, उसमें रुल के उसके जर्रे किधर चले गए, या किस पानियों के अंदर वो डूब गया, तो उसके जिस्म के जर्रे जर्रे होके वो पानियों में किधर किधर है, उसके जर्रे मट्टी में किधर किधर है, किसकी हड्डियां किधर भुर गई और वो मट्टी में रुल गई मिल गई, वो कहाँ पहुंच गया वो बंदा जो एक इंसान की सूरत में था, वो जर्रों की सूरत में होके उसके जर्रे देखे। वो बंदे ने कहा था ना अपने बच्चों से कि जब मैं मर जाऊं तो उसके अंदर इतना लगा खौफ था, कहता है जब मैं मर जाऊं तो मेरी बॉडी को जला देना, कुछ एशेस को पानी में बहा देना, कुछ को हवा में उड़ा देना, कुछ को कहीं फेंक आना। क्यों अल्लाह ताला ने उसको सारे को एक जगह बना के खड़ा कर लिया अपने सामने, पूछा क्यों तूने ऐसे कहा, कहता अल्लाह तेरे आगे खड़े होने के खौफ से। हाँ, तो इंसान सोचता है कि मेरे जर्रे जो है पानी में बह जाएं, मट्टी में उड़ जाएं, जमीन में रुल जाएं, तो पता नहीं कोई मुझे उठा सके या नहीं, या पता नहीं कोई जानता भी होगा कि नहीं कि मैं किधर पड़ा हूं। उस मट्टी से लेके किसी ने बर्तन बना लिए, किसी ने अपनी दीवारों में चुन ली वो मट्टी, किसके जर्रे किधर हैं वो रब जानता है। हम इतने ही भोले हैं कि हम ये सोचते हैं कि उसको ना पता होगा कि किधर मैंने पहुंचना है। हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स वो जानता है, इसीलिए तो वो जिधर किसी ने मरना है उसको भी जानता है। जब भी तो वो कहते हैं वो जहाज जा रहा था, उसकी तबीयत खराब हुई, वो जहाज वहां उतारना पड़ा, वहां पे वो फौत हो गया। वो निकला किधर से, उसने पहुंचना किधर था, वो हवाओं के अंदर है, लेकिन वो उसकी जगह अल्लाह ने लिखी है कि यहाँ इसको मौत आनी है, यहाँ इसने रुकना है, यहाँ इसकी कब्र बननी है। उसको वहीं उतारा जहाज को, क्योंकि इसको यहाँ पहुंचना था। इसी वजह से तो इंसान अपनी मौत की जगह पे खुद चल के चला जाता है बास दफा, ये अल्लाह जानता है यहाँ इसको इसकी मौत लिखी हुई है। तो उसका इल्म तो इतना मुहीत है, इतना मुहीत है हर चीज पे। अल्लाहु अकबर। इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि कबीला आशर का एक वाकया, कि वो लोग हिजरत करके मदीना पहुंचे तो दो जो कुछ तोशा और खाने पीने का सामान उनके पास था वो खत्म हो गया। उन्होंने एक अपना आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि आपसे पूछेंगे कोई खाने का इंतजाम हो सकता है। ये आदमी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे पहुंचा तो अंदर से आवाज आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत ही तिलावत कर रहे थे, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाह। तो उसने ये जब सुनी तो ख्याल आया कि जब अल्लाह ने सारे ही अपनी मखलूक का, सब जानदारों का रिस्क अपने जिम्मे ले चुका है, तो फिर हम क्यों किसी से कहें कुछ, तो हम भी, हमें भी अल्लाह ही देगा, हम क्या जानवरों से भी गए गुजरे हैं कि वो हमें नहीं देगा जब वो सबको खिला रहा है। तो ये ख्याल आया ना, वापस चले गए, कुछ भी कुछ कहा ही नहीं, वहीं से वापस चले गए। अपने वापस आके अपने साथियों के पास आ गए, कहा खुश हो जाओ तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की मदद आ रही है। तो उन्होंने समझा कि पता नहीं ये जाके वहां पे कह के आए हैं, तो फिर तो आपसे सलम ने कोई इंतजाम का वादा फरमाया है, इसलिए आके हमें कह रहे हैं। तो वो मुतमईन होके बैठे, अब ये बैठे ही थे कि ये कोई दो आदमी आए, एक ने गोश्त और एक ने रोटियों से भरे हुए बर्तन उठाए हुए थे। तो वो लेकर आए हैं और इनको दे दिए हैं, तो इन्होंने खूब पेट भर के खाया। फिर जब बच गया तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि बाकी खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दें ताकि उसको आप अपनी ज़रूरत में भी इस्तेमाल करें। तो अपने दो आदमियों को ये खाना दे के आपके पास भेजा, और जब आपकी खिदमत में वो हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आपका भेजा हुआ खाना तो इतना लजीज, इतना मज़ेदार था, तो हमने तो ऐसा खाना कभी खाया नहीं। आपने फरमाया मैंने तो कोई खाना ही नहीं भेजा। तब उन्होंने पूरा वाकया बयान किया कि ऐसे आदमी आया था और ऐसे उसने वापस चला गया। तो आपने फरमाया ये मैंने नहीं बल्कि उस जात ने भेजा है जिसने हर जानदार का रिस्क अपने जिम्मे लिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह, तो अल्लाह ताला रिस्क देता है कहा जाता है। एक और रिवायत आती है मूसा अलैहि सलाम के बारे में कि जब वो आग की तलाश में तूर पे पहुंचे तो वहां पे आग की बजाय अल्लाह ताला की तजल्लियात सामने आई, अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत अता फरमाई। फरमाया जाओ फिरौन की तरफ, तो ख्याल आया कि मैं अपनी बीवी को जंगल में तन्हा छोड़ के आया हूँ, भला उसका उसको उसका क्या बना होगा, उसका कौन कफील होगा, वो खाना किसने दिया होगा। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को हुक्म दिया कि ये सामने पड़े हुए पत्थर की चट्टान पे लकड़ी मारे। उन्होंने लकड़ी मारी तो चट्टान फट गई, उसके अंदर एक दूसरा पत्थर था। हुक्म हुआ इस पे भी लकड़ी मारे, वो ये भी किया तो वो पत्थर फटा और अंदर से तीसरा पत्थर निकला। इस पर भी लकड़ी मारने का हुक्म हुआ, जब वो फटा तो उसके अंदर एक कीड़ा था जिसके मुंह के अंदर एक पत्ता था। अल्लाह ताला दिखाना चाहता था कि देखो मैं कहाँ तक भी अपनी मखलूक को रिस्क पहुंचा रहा हूं, तो आप कैसे फिक्र कर सकते हैं अपने बीवी बच्चों की। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे जब सब जानदारों का रिस्क दिया हुआ है, तो फिर हम भी ये यकीन रखें कि अल्लाह हमें भी रिस्क देगा, ये यकीन रखें। और देखिए सारी मखलूक को वो रब खिला रहा है पिला रहा है, और उसके खजाने खत्म नहीं होते। हम दो लोगों को खिलाने लगे तो तुम्हारे मुंह बन जाते हैं कि हाय अल्लाह तीसरा क्यों आ गया। मेहमान घर आने लगे तो तब भी हमें ये फिक्र होने शुरू हो जाती है क्या कहाँ से देंगे। अल्लाह अकबर। कुल्लुम फी किताब मुबीन, सब का सब एक खुली किताब में लिखा हुआ है। यानी अल्लाह ताला ये नहीं कि सिर्फ वो जानता है, बल्कि एक खुली किताब में भी रिकॉर्ड बना हुआ है। इशारे का रिस्क भी कोई इंसान, हदीस में आता है अपना रिस्क खाए बगैर उसको मौत नहीं आती। यानी जितना अल्लाह ने लिख दिया ना, उसका भी एक जर्रा भी ऐसा नहीं होगा कि आप खाए बगैर मर सके। तो खा के ही मरेंगे, फिक्र ना करें, कहीं नहीं जाता, कोई और नहीं छीन सकता आपका। तो फिर इतनी मसले क्यों है, हाय उन्होंने खा लिया हमारा, हमारा हक था उन्होंने छीन लिया, फलां कर लिया। वो जो जिसका आपको मिलना है वो तो आपका ही है, वो तो किसी को नहीं मिल सकता। और फिर इसी तरह इतना तकब्बुर होना, जी हमने इतना किया तो फिर हमने इतना कमाया, तो फिर हमने इतने जमा किया, फिर हमने ये सब कुछ हमारा बनाया हुआ है, हम सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड क्या होता है, अल्लाह ने ही दिया है, कोई चीज सेल्फ मेड नहीं होती, सब कुछ अल्लाह ने एक किताब में लिखा हुआ है, वो सब कुछ जानता है। अल्लाह अकबर। हु वहु अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ध। तौहीद समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ऐसे ही नहीं कुरान की आयत है, नहीं तौहीद समझाई जा रही है आपको, ये तौहीद है। मैंने आपको बताया ना 1 से 24 आयत तक तौहीद ही तौहीद है। किस बच्चे ने किस माँ के पेट में पैदा होना है, जन्म लेना है, वो माँ तो खुद अभी छोटी बच्ची घूमती फिर रही है, उसको क्या पता, लेकिन अल्लाह को पता है इस बच्ची ने बड़े होकर किसको जन्म देना है, उसको जिसको जन्म देगी उससे आगे किसने जन्म लेना है, और उसके बच्चे कौन होंगे। अब इसलिए इंसान को कितना बेफिक्र कर देता है ना ये। बस मैंने आपको जैसे बताया कि पिछली सूरत भी और ये सूरत भी, तौहीद इनसे ना सीखी तो फिर कहां से सीखेंगे। तौहीद ही तौहीद है इनके अंदर कि इंसान अब अपना भरोसा अल्लाह पे ना रखे तो किधर जाए। फिर भी अगर इंसान फिकरात करता रहे, मुझे तो ये फिक्र है इसकी शादी का क्या होगा, इसके बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, और हम वहां जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे, हम इधर रहें कि उधर रहें, हम मूव करें कि ना करें, हम वहां पे जाएं तो मर ना जाएं कहीं, वहां पे जाएं तो कोई बीमारी हो के ना हम अस्पताल पहुंच गए वहीं पे ना मर जाएं। अल्लाह को पता है किसने किस मुल्क किस जमीन किस मिट्टी में जाना है, क्या वो ना जानता होगा आपकी शादी होनी है कि नहीं, बच्चे होंगे कि नहीं, फलां होगा कि नहीं। हमारी हमारी सोचें तो यही होती है ना, यही हमारी सोचें दिन रात, बस ये इन्हीं सोचों में हम घूमते फिरते रहते। जिसने इन सारी चीजों को टेक केयर कर लिया तो फिर हमारी सोच तो इस बारे में होनी ही नहीं चाहिए, हमारी सोच तो अपनी आखरत के बारे में होनी चाहिए, मगर रिस्क की परेशानी हमें इतनी लगी होती है। जॉब मिल जाए, इसको ये मिल जाए, कारोबार चल जाए, फलां हो जाए। अल्लाह हू अकबर। तो ये वाली आयात जो है, पहले भी बताया था, इतनी एक्सप्लेनेशन की नहीं है बातें, इसमें बस यकीन लाने की बातें हैं। ईमान तो ठीक है, हम कहते हैं हमारा कुरान पे ईमान है, मगर इन आयतों पे ईमान है कि नहीं? ये सिर्फ बातें ही हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا يستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا ومستودعها كل في كتابي